मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 16 मई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं श्वेता शिवम पटना बिहार से और पिंकी जिनका गांव है भिर जिला झुंझुनू राजस्थान से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं बंगाल में पुनर्जागरण इस विषय पर कुछ बातें करना चाहूंगा और इसी के साथ ही मैं ईश्वरचंद विद्यासागर की कुछ चर्चा करूंगा। लेकिन आइए पहले मैं दो विषयों से आपका परिचय करा दूं। पहला तो यह है कि न्यूज में खास कुछ नहीं है। पहला तो यह कि आज के करंट कंटेंट के तहत आपको बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यह टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था और यह इस विषय पर है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, यानी कि एक ही पार्टी को पूरा बहुमत मिल गया है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, लेकिन यहां हम जो बात कर रहे हैं, इनफैक्ट सच पूछे तो केंद्र के संदर्भ में कर रहे हैं। और दूसरा वो है कि गठबंधन की सरकार होती है, जैसे कि अभी तक 1989 के बाद आप देखेंगे कि लगातार भारत में गठबंधन की ही सरकारें बनती चली आ रही हैं। ये बात अलग है कि नरेंद्र मोदी जी की जो 2014 की सरकार थी, देखिए सरकार वो गठबंधन की ही थी, लेकिन ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत अपने आप में भी था। ठीक है, तो आप उसे चाहे पूर्ण बहुमत की सरकार कह लें या गठबंधन की सरकार कह लें, लेकिन बेसिकली हम उसे पूर्ण बहुमत की ही सरकार मान करके चलेंगे। वैधानिक रूप से वो डेफिनेटली गठबंधन की सरकार थी। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। जैसे अभी आप देखिए कि जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, आप कह लीजिए, जो वो मतदाताओं को बता रही है, वो ये है कि मजबूत सरकार चुनिए। पूर्ण बहुमत थी, मजबूत सरकार होती है। जिस सरकार के पास पूरा बहुमत होगा तभी वो मजबूती से काम कर सकेगी, अदरवाइज तो फिर उसे समझौते करने पड़ेंगे, क्योंकि जो गठबंधन की सरकार होगी डेफिनेटली, क्योंकि उसमें दूसरी बहुत सी पार्टियां शामिल हैं, तो उन पार्टियों की बात भी माननी पड़ेगी, तो ऐसी सरकार कमजोर सरकार होती है। दोस्तों, इसमें से कौन बेहतर है, ये बहस फिर से शुरू हो गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहस है। 23 मई को जब हमारे सामने रात तक रिजल्ट लगभग स्पष्ट होंगे कि अब जो सरकार बनने जा रही है वो पूर्ण बहुमत की है या गठबंधन की ही सरकार बनेगी, तब यह विषय हमारे लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहस के दौरान जो आपको नए नए पॉइंट्स मिल रहे हों उसके पक्ष में या विपक्ष में, तो प्लीज आप उन्हें लगातार नोट करते जाएं और मुझे जब भी इस तरह के कुछ आर्टिकल्स या एडिटोरियल कमेंट्स मिलेंगे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। फ्रेंड्स, अब थोड़ी सी बात मैं कल के बारे में करना चाहूंगा, कल के बारे में यानी कि जो बीता हुआ कल है। कल मैंने डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था दैनिक जागरण का, जिसमें उन्होंने सिस्टम में बदलाव की बात कही थी। मुझे नहीं मालूम कि आपने मेरी बात को कितनी गंभीरता से सुना और सुनने के बाद उसे कितनी गंभीरता से लिया। मित्रों, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि यदि आपने उसे गंभीरता से नहीं लिया हो तो प्लीज आप उस आर्टिकल की उपेक्षा मत करें। सिस्टम में बदलाव के बारे में उन्होंने जो 5 उपाय बताए हैं वो बहुत ही अच्छे उपाय हैं। और मजेदार बात है कि इन 5 उपाय केवल एक ही प्रश्न से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि इनफैक्ट सच पूछे तो ये 5 अलग अलग प्रश्नों से भी जुड़े हुए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जब वो ये कहते हैं कि जो हमारे अधिकारी होते हैं, जो उच्च पदों पर होते हैं, उनका रिक्रूटमेंट कैसे होना चाहिए या उनका चयन कैसे होना चाहिए, हम चयन की बात करें, तो देखिए उन्होंने अमेरिका की पद्धति को बताया है कि किस तरह से एक संसदीय समिति अंततः उनके बारे में फाइनल करती है। ये बात अलग है कि जो नॉमिनेशन होता है या शुरुआत में जो नियुक्ति होती कह लीजिए, उसे राष्ट्रपति करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिक्रूटमेंट का प्रश्न बन जाता है, रिक्रूटमेंट के प्रश्न का उत्तर बन जाता है। फिर आप देखिए कि ऑडिट के बारे में बताया गया है कि हमारा अभी जो ऑडिट होता है, खासकर सरकारी ऑडिट, वो इन हाउस होता है। सरकारी एक सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनका ऑफिस ऑडिट करता है। इस पर वो कह रहे हैं कि नहीं, उसका ऑडिट बाहर से कराया जाना चाहिए, जैसे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के कराए जाने लगे हैं। तो ये ऑडिट पर एक उत्तर बन मिल गया आपको। इसी तरह से है देखिए कि अलग अलग की जो खर्चों, जो हमारा ऑडिट होता है वो केवल ये देखता है कि जो खर्च किया गया है वो नियम के तहत किया गया है या नहीं किया गया है, वो ये नहीं देखता है कि जिस चीज पर खर्च किया गया है उस पर खर्च किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, जिसे उन्होंने नाम दिया इम्पैक्ट ऑडिट। इम्पैक्ट ऑडिट आपको एक बहुत अच्छा शब्द मिल गया, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि शब्दावलियों पर भी आपको काम करना चाहिए, भाषा पर भी काम करना चाहिए। चौथा उन्होंने ये बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आईएएस अफसर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो जब वो काम कर चुके होते हैं या कर रहे हैं तो वहां जो लोग हैं जो उनसे प्रभावित हो रहे हैं उनको एक गुप्त पत्र भेजा जाए और पूछा जाए कि भैया ये कैसा काम कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है नहीं कर रहा है, गुप्त पत्र की वो बात कर रहे हैं। तो यहां अकाउंटेबिलिटी आपको दिखाई दे रही है कि आप अकाउंटेबिलिटी पैदा कर सकते हैं ऐसा करके अधिकारियों से पर, क्योंकि जब अधिकारियों को ये पता लगेगा कि भैया लोगों से पूछा जाएगा गुप्त रूप से तो वो ज्यादा सतर्क होकर के काम करेंगे। और जो पांचवा उपाय दिया वो बहुत ही खूबसूरत है कि हमारे पास सूचना का अधिकार तो है लेकिन जवाब का अधिकार नहीं है, और उसको बहुत अच्छे से उन्होंने उदाहरण के जरिए समझाया भी है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पुल बनाया गया जो 10 फुट चौड़ा है, तो आप उसके बारे में कोई भी जानकारी मांगेंगे सूचना के अधिकार के तहत तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको यह पूछने का अधिकार नहीं है कि भाई आपने 20 फुट का क्यों नहीं बनाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये भी पूछिए कि 20 फुट का आपने क्यों नहीं बनाया है, ताकि आपको उनके जो निर्णय लेने की जो स्थिति है, जो क्षमता है, उसके बारे में भी पता लग सके। तो आप देखिए कि कितने खूबसूरत उपाय उन्होंने सुझाए हैं जो आपके अलग अलग तरह के प्रश्नों में काम आने वाले हैं। मित्रों, इसकी उपयोगिता को आप समझिए, और मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसे पूरी गंभीरता के साथ लें आप, और अगर बेहतर होगा कि इसको अपने पास, इस आर्टिकल को अपने पास रख भी लें। मित्रों, अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, जो मैंने कहा बंगाल में पुनर्जागरण। पहली बात यह है कि मैंने इस विषय को क्यों चुना। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने का अपना एक बहुत अच्छा ये तरीका होता है। आपने कल न्यूज में चैनल्स पर भी सुना, आज के अखबार भी भरे हुए हैं कि किस तरह से बंगाल में जो चुनाव कैंपेन हो रहे हैं वो हिंसात्मक होते जा रहे हैं। और कल दुर्भाग्यजनक एक स्थिति ये हुई कि जो विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर जी की जो मूर्ति थी वो तोड़ दी गई है ना। अब उस पर ठीक है, राजनीतिक ढंग से सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, वो हमारे बहस का, चर्चा का विषय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए ईश्वरचंद विद्यासागर कम से कम एक साल के लिए या नेक्स्ट प्री एग्जामिनेशन यहां तक कि मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो गए हैं, क्योंकि ईश्वरचंद विद्यासागर जी का नाम काफी प्रोमिनेंटली आ रहा है और अभी कुछ दिनों तक आता भी रहेगा। इसी तरीके से हम अपने लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनका चयन करते हैं, और ईश्वरचंद विद्यासागर बकायदे आपके सिलेबस में हिस्ट्री के तहत अगर आप रिनेसा पीरियड को देखेंगे, फ्रीडम मूवमेंट के तहत देखेंगे तो है भी। अब आप देखें कि मेरे इस लेक्चर के दो पार्ट होंगे। नंबर एक, बंगाल में पुनर्जागरण, ये एक वाइडर पर्सपेक्टिव को लेकर के चल रहा है, व्यापक रूप को लेकर के चल रहा है, और एक पर्टिकुलर ईश्वरचंद विद्यासागर। आइए पहले मैं बात कर लूं ईश्वरचंद विद्यासागर से, क्योंकि बंगाल में पुनर्जागरण पर बहुत देर तक बात की जा सकती है। ईश्वरचंद विद्यासागर जो है मित्रों, आप जानते हैं इनका पूरा नाम था ईश्वरचंद बंदोपाध्याय, और ये बहुज्ञ व्यक्ति थे, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में इनका ज्ञान था, ईश्वरचंद बंदोपाध्याय। और जो विद्यासागर है ये इन्हें उपाधि दी गई थी, जिस संस्कृत कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था उसी कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर, विद्या का सागर यानी कि ओशन ऑफ नॉलेज, ये उपाधि उन्होंने दी थी, क्योंकि ये बहुज्ञ थे, मतलब फिलॉसफर भी थे, राइटर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, मतलब बहुत से क्षेत्रों में इनका ज्ञान अद्भुत था। फ्रीडम मूवमेंट में इनका नाम दो तीन क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त रूप से लिया जाता है, और उसमें सबसे बड़ा है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, कल्पना करके देखिए कि 1891 में तो उनकी डेथ हो गई थी, उस समय वो 70 वर्ष के आसपास के थे, 1840-50 के आसपास, 1850 की आप कल्पना कीजिए, 1850 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए जबरदस्त आंदोलन छेड़ा था, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लोग इनके खिलाफ भयानक रूप से खड़े हो गए थे, इसके बावजूद इनकी कोशिश का परिणाम रहा कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पारित हुआ, और ये बहुत बड़ी बात थी। इनका नाम सबसे ज्यादा इस क्षेत्र के लिए लिया जाता है, और बाद में उन्होंने इसी के साथ ही, बाद में नहीं बल्कि उसी के साथ ही, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया कि पति एक है और कई कई पत्नियां रखे हुए हैं, और बाल विवाह का भी इन्होंने बहुत विरोध किया था। तो ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम बहुत ही सम्मानित तरीके से एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में लिया जाता है, और इन्हें बंगाल के पुनर्जागरण के जो हमारे अग्रदूत रहे हैं उनमें से एक माना जाता है। ये राजा राम मोहन राय से थोड़े से बाद के हैं, यानी कि जब राजा राम मोहन राय के जीवन का की समाप्ति होती है तो आप यूं कह लीजिए कि उस समय ईश्वरचंद विद्यासागर वगैरह कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। ताज्जुब मानेंगे आप, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे लगता है कि इसकी चर्चा की जानी चाहिए, कि जब ये विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन कर रहे हैं तो ये नहीं कि दूसरे करें घर पर उसका उदाहरण न हो। इन्होंने अपने बेटे का विवाह, सोचिए कि विधवा से कराया था, बेटे का विवाह करके उन्होंने दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल रखा था। यह बहुत बड़ी बात है। तो हमारी विभूतियों, हमारी जो विभूतियां हुई हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान या मॉडर्न इंडिया में, उसमें एक है ईश्वर चंद विद्यासागर। दोस्तों, बंगाल में पुनर्जागरण, तो जो पुनर्जागरण शब्द रिनेसा यानी कि इंग्लिश में हम इसे कहेंगे रीबर्थ, फिर से जागृत होना, ये जो शब्द आया है ये बेसिकली यूरोप से आया, खासकर इटली में। आपको मालूम होगा कि 15th-16th सेंचुरी में ये पुनर्जागरण का दौर बहुत तेजी से उभरा था। इसका मतलब है कि समाज फिर से सो गया था, यानी कि जो मध्यकालीन हमारे मूल्य हैं, जो मेडिवल, जो हमारे वैल्यूज हैं, वो मेडिवल वैल्यूज जो समाज को जकड़े हुए थे, जिसने समाज की चेतना को सुप्त कर दिया था, कुछ ऐसी बातें हुई कि वो धीरे 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 जागृत होने लगे। जब हम कहते हैं जागृत होने लगे, तो उसका सबसे बड़ा जो पक्ष होता है वो है रैशनलिज्म, यानी कि वो चीजों को तार्किक आधार पर सोचने लगे, और बंगाल में यही हुआ। देखिए, बंगाल में खासकर जब बंगाल में अंग्रेजों ने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया, तो बंगाल में अचानक एक तरह की हलचल होने लगी। मतलब ये बंगाल के लोग थे जो कहा जाता है कि सबसे पहले, मतलब पूरे के पूरे अगर एशिया में देखें तो वेस्ट के संपर्क में आए, बाहर जाने लगे, बाहर की एजुकेशन इनकी होने लगी। तो अंग्रेज वहां बहुत बड़ी संख्या में रहते थे, तो उनके संपर्क से इनमें एक अलग तरह के वैल्यू सिस्टम पैदा होने, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी की भावनाएं, समानता की भावनाएं, रैशनलिटी की भावनाएं, और इसका जो प्रभाव पड़ा वो जीवन के सभी क्षेत्रों में पड़ा। चाहे आप कल्चर ले लीजिए, चाहे आप सोसाइटी ले लीजिए, चाहे आप इंटेलेक्चुअली ले लीजिए, चाहे आप आर्ट लिटरेचर वगैरह ले लीजिए। और आप देखिए कि इसी का परिणाम था कि राजा राम मोहन राय जैसी पर्सनालिटी उभर कर आई। राजा राम मोहन राय, जिन्हें हम बंगाल के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं, पायोनियर कहते हैं, 1775 में इनका जन्म हुआ था और 1833 में इनका निधन हो गया। जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाने वाले जो व्यक्ति थे वो राजा राम मोहन राय ही थे। और इसके बाद फिर हमें एक सीरीज ऑफ इस तरह के इंटेलेक्चुअल और सोशल रिफॉर्मर दिखाई देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरा परिवार आप देख लीजिए, बंकिम चंद चटर्जी देख लीजिए, शरद चंद देख लीजिए, ऐसे ना, तो बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटी बंगाल में हुई है। आप रामकृष्ण परमहंस के आप जब धार्मिक विचारों को सुनेंगे तो आपको बिल्कुल अलग तरीके से चीजें दिखाई देंगी। फिर आप विवेकानंद से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। तो आप यूं कह लीजिए कि खासकर लगभग 19वीं शताब्दी के शुरू से लेकर, मतलब 1825 के आसपास से लेकर के, और लगभग यूं कह लीजिए कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक का जो बंगाल रहा है वो अद्भुत बंगाल रहा है, जिसे हम उसके लिए पुनर्जागरण का नाम देते हैं। और इस बंगाल के पुनर्जागरण का इम्पैक्ट जो है वो भारत पर भी पड़ा है। तो इसीलिए कहा जाता है कभी कभी ये भी कि जो यूरोप का पुनर्जागरण है वह भारत में बंगाल से होते हुए आया है। तो दोस्तों, मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको बंगाल में पुनर्जागरण के बारे में दी है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक पर थोड़ी सी अतिरिक्त पढ़ाई भी कर लें और इसे थोड़ा सा समझ लें। तो मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं अनूप कुमार सर्राफ, अनुज कुमार रांची झारखंड से, और जगमल वाम्भू। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।